आने बानी विद सानी में आज हमारे साथ है दीपांशु गुनवार। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, दीपांशु जी एक बहुत खूब पोएट और न्यूज़ एंकर हैं और दीपांशु जी रहबर भी चलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रहबर क्या है। अगर आपको जानना है रहबर के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला एक कहानी के साथ। तो दीपांशु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी यहाँ से घर तक पहुँचने की कहानी।
तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पारस, बहुत बहुत थैंक यू। आनी पानी विद पारस सहानी एक छोटी सी उम्र में आपने शुरू किया है, आप खूब तरक्की करो। घर तक पहुंचने की कहानी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जब आप मन में ठान लेते हैं कि यार मुझे यही करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता,
बिल्कुल
आप किसी भी चीज़ पे हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। बचपन जो है वो गाँव में बीता, गाँव के परिवेश में बीता। बचपन में जो चीज़ें देखी उन्हीं चीज़ों को लिखना शुरू किया। अब जब क्या होता है ना कि आप जब दूर शहर पे होते हैं और जब आप शहर में बैठे हुए लोगों को गांव याद दिलाते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जब आप शहर के लोगों को गांव के बारे में बातें करते हैं अच्छा लगता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने भी शुरू किया कि उन्होंने मैंने कहा कि शहर की दौड़ भाग हुई ज़िंदगी है, कुछ दिन आदमी को रेस्ट मिलता है, कुछ दिन आदमी को चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने उनकी तरह काम करना शुरू किया, जो उनको पसंद है वो करना शुरू किया, खुद की पसंद है जो उसको करना शुरू किया। देखते देखते लगा कि यार ये अच्छा हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा चलने लगा। और फिलहाल जो है एज ए पोएट आप कह सकते हैं, एज ए न्यूज एंकर कह सकते हैं, रिपोर्टर कह सकते हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा करें।
अच्छा
अच्छा हो रहा है।
तो अब आप सबको पता चल ही गया है दीपांशु जी की एक छोटी सी कहानी। तो दीपांशु जी, रहबर क्या है?
बेसिकली हुआ क्या था कि कॉलेज टाइम पे हम लोग थोड़ा सा आर्टिस्टिक थे, लेकिन स्टेज वगैरह नहीं मिल पाता था। तो हमने कहा यार कि कुछ ऐसा करें कि यार स्टेज मिल जाए लोगों को भी, हमें भी थोड़ा कविताएँ सुनाने का अच्छा शौक़ था, गीत गाने का शौक़ था, इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया कुछ लोगों को जोड़कर। तो उसकी शुरुआत की है मैंने हल्द्वानी से। हमने कहा यार संडे का दिन रहता है, सैटरडे का दिन रहता है, लोग थोड़ा सा बोर्ड फिर करते हैं, छुट्टी का दिन है तो उस दिन कुछ करते हैं। तो हमने शुरुआत की एक ओपन माइक इवेंट की। अब हमने ओपन माइक इवेंट को भी थोड़ा अलग तरीके से लिया। आज तक हमने ओपन माइक देखे होंगे तो देखा होगा कि यार वहाँ पर कोई मुख्य अतिथि नहीं होता या चीफ गेस्ट नहीं होता या सब लड़के लड़के होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, ओपन माइक में हमने एजेड लोगों को भी बुलाना शुरू किया, नानी लोग को बुलाना भी शुरू किया, बच्चों को बुलाना भी शुरू किया, चीज़ों को बुलाना शुरू किया। तो शुरुआत की थी 10-15 लोगों से थी, आज अच्छी टीम है जो काम कर रही है। ये कह सकते हैं कि रहबर एक तरह की ऐसी संस्था है, एक तरह का ऐसा परिवार है जहाँ पर अगर आप आर्ट को प्रमोट करते हैं, आप आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, अपनी कविताएं हमें सुना सकते हैं, हम उसे अपने चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट करते हैं।
अच्छा।
और जो है स्टेज प्रोवाइड करते हैं, जो नए लोग हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं।
तो आपका ये रहबर को शुरू करने का मोटिव क्या था?
मोटिव सिर्फ इतना था कि जितने हमारे आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक स्टेज मिल पाए।
अच्छा।
अब कोई भी बच्चा है वो कविताएं लिखता है, गाना गाता है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे आसपास नहीं था जहाँ पर आके वो सुना सके अपनी कविताएं, अपने गाने। तो हमने क्या किया, एक स्टेज क्रिएट किया। हम कुछ आर्ट जो हमारे कलाकार हैं उनको बुलाते हैं, कुछ सुनने वालों को बुलाते हैं, सुनने वालों को सुनने को मिल जाता है, सुनाने वालों को सुनाने को मिल जाता है, दोनों का काम बन जाता है।
अगर किसी को रहबर से जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकता है?
पारस क्या करना होगा, अगर कोई रहबर से जुड़ना चाहे तो हमें फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है संपर्क कर सकता है। और साथ ही हमारे एक नंबर है 9149109080, तो ये जो है रहबर का ऑफिशियल नंबर है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं।
तो जाइए, इन्हें कॉन्टेक्ट कीजिए और रहबर से जुड़िए। दीपांशु जी, आप रहबर को शुरू करने से पहले क्या करते थे?
रहबर को शुरू करने से पहले मैंने जो है बहुत जगह काम किया है। पहले क्या हुआ था कि मैं गांव से जब निकला था तो पढ़ाई के लिए नैनीताल आया। नैनीताल मैंने कुछ समय अपना थिएटर को दिया। उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था रेडियो कुमाऊँवाणी में, ये आरजे रेडियो जो की, तो वहाँ पर कुमाऊँनी लैंग्वेज पे हमने काम किया। आफ्टर दैन मैं हल्द्वानी आया तो मुझे लगा कि रेडियो के साथ साथ मैं कुछ और भी समय मेरे पास बच रहा है, तो मैं कुछ इस तरह का कर सकता हूँ जिससे समाज से मैं जुड़ पाऊँ, लोगों से मैं जुड़ पाऊँ। तो देन मैंने जो शुरू किया वो रहबर किया। तब जो आपका सवाल था शायद इसमें उसका उत्तर होगा कि रहबर मैं शुरू करने से पहले मैं रेडियो पे काम करता था।
अच्छा, आप एक बहुत अच्छे खूब पोएट हैं
जी,
पर आप न्यूज़ फील्ड में कैसे आ पहुँचे?
देखो होता क्या है ना कि मेरा मन अगर मैं कहूँ तो पोइट्री पे अभी भी ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा था।
हाँ।
लेकिन क्या है कि हमारे लिए दुर्भाग्य कहें या आप केवल और केवल पोइट्री से, मतलब मैं, मुझे जो है, मैं चाहता था कि मैं केवल पोइट्री पे काम करूं, लेकिन मुझे पोइट्री से उतना पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा था। शोज की बात करूं तो नहीं मिल पा रहे थे उतने जितने मिलने चाहिए थे, जिससे मेरी दिनचर्या चल पाया, चीज़ें चल पाई। तो रेडियो मेरे लिए एक अच्छा माध्यम था उस वक्त, सीखने को मिल रहा था, चीज़ें मिल रही थी। तो समय के साथ कहें कि एक अच्छा ऑफर मेरे पास था, एक यहाँ पर न्यूज़ स्टडी वन उत्तराखंड करके एक चैनल है, तो उन्हें लगा शायद कि मैं उनके वहाँ अच्छा काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर अपॉइंट किया था रेडियो के बाद। तो जब मैंने न्यूज़ फील्ड पे स्टार्ट किया तो मैंने केवल और केवल एक मनोरंजन की तरह से उसे लिया था।
अच्छा,
लाइक मैंने सोचा कि मैं पॉडकास्ट कर लूँगा, कुछ शोज कर लूँगा, कुछ कभी सम्मेलन कर लूँगा वहाँ पर और कुछ इंटरव्यूज कर लूँगा। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं कब ऐसा कुछ हुआ कि फिर मैं न्यूज़ पढ़ने लगा, रिपोर्टिंग करने लगा, और अब तो बहुत आगे बढ़ गई है ज़िंदगी कह सकते हैं, इतने आगे नहीं लेकिन अब तो मतलब रिपोर्टिंग के फील्ड पे कहूँ या मीडिया के फील्ड पे कहूँ तो मज़ा आने लगा है चीज़ों को करने में, लोगों से मिलने में। तो ये है,
हमने सुना है कि आपने खुद का न्यूज़ चैनल भी शुरू कर दिया है।
हाँ, ये बहुत ही अभी नया चैनल है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी इसको एक केवल एक हफ्ता हुआ है। और ये भी बड़ी एक संघर्ष की कहानी है क्योंकि मैंने दो न्यूज़ चैनल्स पे काम किया। जो पहला न्यूज़ चैनल था, पहले मैंने रेडियो पे काम किया, मैंने आपको बताया, उसके बाद एक से डेढ़ साल के तकरीबन मैंने न्यूज़ स्टडी वन उत्तराखंड, उत्तराखंड का एक लोकल चैनल, उस पर काम किया। और उसके बाद जिससे मुझे भी थोड़ा सा ख्याति मिली, ख्याति का मतलब है कि लोग मुझे जानने लगे, वो जे न्यूज़ था, तो वहाँ पर मैंने करीबन एक साल काम किया। मुझे लगा कि उसके बाद मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, सोचा था। तो लोग दोस्त लोगों के साथ बातें हुई, कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट्स हुए, तो लगा कि यार ये सही समय शायद भी है कि कुछ अपना कर लेते हैं।
अच्छा,
तो फिर हमने शुरू कर दिया उत्तराखंड का पहला ट्रेवलिंग बेस न्यूज चैनल।
अच्छा,
पगडंडी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पगडंडी के लिए।
धन्यवाद।
दीपांशु जी, क्या आप अब हमें अपना कोई सीक्रेट बता सकते हैं जिस किसी को भी ना बताओ?
ऐसा सीक्रेट ये है कि ये मैंने कभी बोला नहीं है।
अच्छा,
मैं रोज डायरी लिखता हूँ और ये डायरी लिखना मैंने केवल तब से शुरू किया है जब से मैंने पगडंडी शुरू की।
अच्छा,
जो अभी का करंट पे चल रहा है कि हाँ। अभी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज जो है अपनी पूरी दिनचर्या को रात को लिख पाऊँ, और फ्यूचर अगर अच्छा होगा तो वो एक किताब के रूप में, उसका पूरा मैं अपने संघर्ष के 365 दिन इस तरह से कोई किताब या एक साल का पूरा डेटा तुम लोगों के सामने रखूंगा, यदि वैसे ही जैसे मैं इस लाइफ को अभी इंजॉय कर रहा हूँ या जी रहा हूँ।
तो अब आप सबको दीपांशु जी का सीक्रेट ही पता चल ही गया है, तो बढ़ते हैं आगे। तो दीपांशु जी, अगर आप किसी लॉटरी में 90 लाख रुपए जीत गए तो आप उसे कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहेंगे?
पहली बात, लॉटरी शायद ही मैं खेलूंगा कभी।
अच्छा,
क्योंकि मैं जुए पे विश्वास नहीं रखता बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी जुआ नहीं खेला।
अच्छा,
मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे घर वालों को तकलीफ हो या मुझे लगे कि मेरे लिए बेकार है। हाँ, जो मुझे अच्छा लगा।
अच्छा,
मैंने वो हमेशा किया। तो शायद ये संभव नहीं होगा क्योंकि जुए से कमाया हुआ पैसा जुआ मतलब मुझे नहीं पसंद और शायद नहीं होगा ये संभव।
बट लॉटरी जुआ थोड़ी ना हुआ।
जुआ नहीं है लेकिन किस्मत है कि आप उस पे जब जाएंगे उस फील्ड पे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब बेसिकली अगर मैं 90 लाख रुपए मेरे पास आते हैं तो उसको मैं कहीं अच्छे इन्वेस्ट में लगाऊंगा, अच्छी चीज़ों पे लगाऊंगा। मेरा एक सपना है कि मैं एक गांव खोलूं।
अच्छा, गांव।
गांव खोलूं, गांव एक जगह का नाम हो जहां पर आपको सब कुछ मिले गाँव की तरह और वो शहर पर हो।
अच्छा,
तो शायद मैं पहला इन्वेस्टमेंट मेरा वहाँ होगा।
दीपांशु जी, आप काफ़ी बड़े पोएट हैं, तो आप मुझे बताइए कि हर पोएट प्यार के बारे में क्यों बात करते हैं?
होता क्या है ना कि पारस, सुनो, जो आदमी फील करता है वो आदमी लिखता है, जो आदमी लिखता है वो कवि कहलाता है। मैं इतना समय तो मुझे कविता के फील्ड पे नहीं हुआ, लेकिन प्यार शायद इसलिए आदमी ज़्यादा लिखता है क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा प्यार करता है, उसको महसूस ज़्यादा करता है। और प्यार ऐसी चीज़ है जिसमें महसूस किया जा सकता है, इसके बारे में लिखा जा सकता है। और सही बात तो ये है कि जो लिखने वाला होता है वो लिखता है जो उसको फील हो, और वो लिखता है जो जनता सुनना चाहे। प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं इसलिए प्यार लिखने वाले लोग ज़्यादा हो रहे हैं।
काफ़ी सही तरीके से आपने हमें समझाया है। तो दीपांशु जी, अगर मैं आपके पेरेंट्स से पूछूं आपका बेटा क्या करता है, तो आपके हिसाब से वो मुझे कह जाएंगे?
आज से अगर कुछ साल पहले पूछते तो शायद आपको बहुत सुनने को मिलता उनके द्वारा।
अच्छा।
लेकिन अभी सही है, क्योंकि हुआ क्या कि मैंने इंजीनियरिंग की, देन फिर मैंने फील्ड अपना चेंज किया, तो उसमें घर वाले थोड़ा सा गुस्सा भी थे कि यार कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन अगर आप अभी उनसे पूछेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, तो उनके माथे में भी एक चीज़ दिखती है कि चलो वो कुछ अच्छा कर रहा है। घर वालों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं और है क्या, तो अच्छा फीडबैक मिलेगा।
तो आप हमें कुछ पगडंडी के बारे में और बता सकते हैं?
पगडंडी बेसिकली उन जगहों पर काम करेगा। तो मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ पगडंडी का, जो मैंने इंट्रो एक बार बनाया था, तो शायद आपकी उम्र तो थोड़ा कम है, लेकिन एक शक्तिमान करके सीरियल आता था। तो बचपन में आपने देखा होगा शक्तिमान एक नाटक आया करता था, जिसमें शक्तिमान उड़ता था और जगह जगह जाकर लोगों की सहायता करता था, मदद करता था। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम शक्तिमान हैं, और ये भी संभव नहीं कि हम उड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी गाड़ी में बैठ कर उन लोगों तक जा सकते हैं जिन लोगों को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, उन लोगों की बातें सुन सकते हैं। अमूमन अभी सरकार बहुत व्यस्त चल रही है, सरकार के पास काम बहुत सारे हैं, तो सरकार का काम हम थोड़ा सा आसान कर देंगे। जिन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा तकलीफ है, उनकी समस्याओं को उठाकर सरकार के कानों तक डालने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, सरकार को थोड़ा मदद हो जाएगी और लोगों को भी मदद हो जाएगी। और पगडंडी जो है वो छोटे छोटे रास्तों से शहर को जोड़ता है, वो शहर के विकास में गांव का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने डेवलप हमारे शहर हैं उतने ही डेवलप हमारे गाँव हों, एक सपना है पगडंडी, और उलझे हुए सवालों का जवाब है पगडंडी।
बहुत खूब। तो अगर किसी को पगडंडी सुनना हो या देखना हो न्यूज़ चैनल, तो वो कहाँ पे सुन सकता
तो
है?
अभी सबसे जो अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो है पोर्टल। आप अगर गूगल पे जाएं तो www.pagdandinews.com पे आपको हम मिल जाएंगे। साथ ही आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जगह जगह हम मिल जाएंगे। बाकी हम हर सिटीज पे शो करते हैं उत्तराखंड के, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से लेकर आपके गढ़वाल के टिहरी तक, देहरादून तक हम शो करने वाले हैं। कुमाऊं से कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बहुत जल्द गढ़वाल में भी जाएंगे, तो उत्तराखंड के हर हिस्से में हम आपको मिल जाएंगे। और डिजिटली आप जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है, डिजिटली आप ज़्यादा अच्छा नहीं समझते तो हम आपके शहर पे आएंगे। शहर में आने से पहले हम आपको फेसबुक पे इन्फॉर्म कर देंगे कि आज हम इस शहर पे हैं, इस गली में हैं, इस जगह पे मिलेंगे, तो आप कोई भी आके पगडंडी का हिस्सा बन सकते हैं, मिल सकते हैं।
तो पगडंडी जो है वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है या फिर और भी आगे जाएगा?
देखिए, सपने तो बहुत बड़े हैं,
हाँ,
लेकिन जब आप एक एक ईंट जोड़ेंगे तब जाके एक मकान बनेगा, फिर जाके उसमें छत पड़ेगी, फिर पलस्तर होगा, फिर रंगमानिश होगा, फिर गृह प्रवेश होगा, फिर आप उसमें रहने लगेंगे। तो हमारा बहुत ही हम कम बजट पे बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और सपने बहुत बड़े हैं। तो हमारी कोशिश है कि अभी टीम हमारी छोटी है, 5-6 लोग साथ पे हैं, तो टीम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे उत्तराखंड से बाहर भी निकलेंगे। लेकिन इस साल जो है 21 चल रहा है, 22 के एंड तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम उत्तराखंड में इतना कवर कर लें कि हम यूपी के कुछ एरियाज को कवर करना शुरू कर लें। लेकिन फिलहाल जो अभी हमारी जहाँ तक हम सीमित हैं वो उत्तराखंड है।
तो जाइए और जाके पगडंडी को फॉलो करिए, उनके न्यूज पोर्टल में सुनिए। तो अब बढ़ते हैं आगे।
जी
दीपांशु जी, आप हमें कुछ अपना लिखा हुआ सुनाइए।
मैं आपको लिखा हुआ सुनाऊंगा, मैं गांव की बात करता हूँ, अमूमन गांव से जुड़ी हुई बात करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, पारस में गांव गया हुआ था, तो एक आमा हमारे साथ बैठी, आमा का मतलब होता है दादी। तो दादी से मैंने पूछा कि क्यों गांव खाली हो गए, क्यों लोग बाहर चले गए। तो दादी ने मुझे जो जवाब दिया उसे मैंने अपने कविता के रूप में प्रस्तुत किया। वो थी कि जब से आई सड़क मेरे गांव में, गांव तब से नहीं मेरे गांव में। जब से आई सड़क मेरे गांव में, गांव तब से नहीं मेरे गांव में। छोटे छोटे रास्तों को चौड़ा बना कर, ऊंचे लंबे व्यक्तियों को बौना बना कर, लगी किसकी नजर मेरे गांव में, गांव तब से नहीं मेरे गांव में।
बहुत खूब, बहुत खूब। तो जिन्हें भी ऐसी पोइट्री सुननी हो जाके दिवांशु जी को फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे,
बिल्कुल,
और फेसबुक पे,
बिल्कुल।
तो अब बढ़ते हैं आगे। दीपांशु जी, आपको पैशन फॉलो करके पैसे कमाने में क्या क्या दिक्कतें हैं?
देखो, दिक्कतें तो हर कदम पे है, लेकिन दिक्कतों को अगर आप फेस करते हैं, टिके रहना जरूरी है। हम जब हम अभी गाड़ी पे आ रहे थे, ऑफ द कैमरा हमारी जो बातें चल रही थी वो यही था कि अगर आप किसी जगह पे रहते हैं, हुआ क्या था आर्टिस्ट के साथ, लगभग जो आर्टिस्ट हमारा था वो लॉकडाउन पे घर चले गया, लौट गया, अपने एम से भाग गया, कई लोगों ने अपने फील्ड को छोड़ दिया। टिके रहना जरूरी था, लॉकडाउन मेरा भी लगा था तो मेरे पास भी जितने इनकम के सोर्सेस थे वो सारे बंद हो चुके थे। अगर मैं हिम्मत हार जाता, मैं वापस चले जाता, तो शायद मैं, मुझे आपने अभी यहाँ पर बैठने के लिए नहीं बुलाया होता, क्योंकि मेरा नाम कहीं ना कहीं वहाँ दब जाता। तो फेस करना जरूरी है। पैसे को लेकर तो प्रॉब्लम आता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर आपके पास, अगर आप खानदानी रईस नहीं है तो प्रॉब्लम तो आएगी,
बिल्कुल,
स्टार्टअप पे आएगी। तो एक एक ईंट, वही मैंने बोला कि तब फेस किया था लॉकडाउन के समय पे, घर पे थे तो किताबें पढ़ी, कुछ नहीं हो पा रहा था, पैसे जितने सेविंग्स थे उस पर काम चलाया, किताबें पढ़ी, मूवीज देखी, लोगों से बातचीत करना नहीं छोड़ा। लॉकडाउन पे जहाँ पर सबकी जॉब गई, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिली कि यार आप मेरे वहाँ काम कीजिए। एक जगह था तो दो लोगों ने बोला कि मेरे वहाँ काम कीजिए। आज भगवान की दया से इतना अच्छा तो है कि उत्तराखंड पे जैसे ही मैं एक न्यूज चैनल को छोड़ा, एक स्टेटस डाला कि मैंने ये मूव किया, तो मुझे दो चैनल्स के और कॉल आए कि आप हमारे वहाँ काम कीजिए। तो यही तो चाहिए एक आर्टिस्ट को, जब आप जमेंगे, आपका काम लोगों को पसंद आएगा, तो कोई ऐसा आज तक नहीं है जो आपके काम को जो है चुनौती दे पाए। ओवरऑल जो मुझे लगता है, आपके कंटेंट पे दम होना चाहिए, आपके काम पे दम होना चाहिए, आप पे दम होना चाहिए, मन में हौसला होना चाहिए, थोड़ी मोटी तकलीफ आएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
बिल्कुल सही। तो आपको हल्द्वानी में रह के कुछ दिक्कतें नहीं हुई?
हल्द्वानी रह के बहुत प्यारी प्यारी सिटी है, बहुत प्यारा शहर है, कोई तकलीफ नहीं होती। थोड़ा बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, थोड़ा सा प्लेस में निकलते हैं तो ऐसा लगता है अबे कहाँ क्या कर रही है अबे, ऐसे बातें होती है। लेकिन हल्द्वानी में भी नहीं सुना, हल्द्वानी में बड़े प्यारे से लोग बोलते हैं, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, अरे रोड पार करते हैं, उसे दो लोग पहचान के मिल जाते हैं, हर गली से निकलते हुए लोग जान पहचान के मिल जाते हैं। मटे गली में कपड़े खरीदने जाओ तो वहाँ भी दोस्त मिल जाते हैं कि नहीं हमारे वहाँ से लो आपको इतने रुपये, और कहीं पर कार्ड बनाने जाएँ तो वहाँ पर सस्ता मिल जाता है। तो मतलब हम लोगों का काम ही ऐसा है कि आदमी हमारे साथ दिल से जुड़ता है। लाइक मैं किसी की शॉप पे एक फ्लैक्स बनाने में जाऊँ और लोगों को, मुझे कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, उसने मुझे केवल वीडियोज पे देखा है,
अच्छा
दूर से देखा, जब मैं उसके पास जाऊँ उससे बात करूँ कि भैया ये बनाना है तो बोलता है अच्छा आप वो हो ना, मुझे आप, मैंने आपको देखा है, तो अच्छा लगता है। उस वक्त काम आसान हो जाते हैं। काम आसान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं इतने प्यारे शहर पर बैठा हूँ, तो जिस शहर में हम काम करने आए हैं वो शहर आपको तकलीफ कैसे दे सकता है, शहर तो मोहब्बत का शहर है।
अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका रोल मॉडल कौन है?
मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है अभी के वक्त पे वो कुमार विश्वास हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेता हूँ। हेमंत बेसी नैनीताल के रहने वाले हैं तो उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा पोइट्रीज में जो सुन रहा हूँ पीयूष मिश्रा हैं, सबके रोल मॉडल रहते हैं, उनको सुनने को मिलता है। अमीश को मैं बहुत ज़्यादा अभी पढ़ने लगा हूँ स्पीच पे, और पहाड़ की जानकारी में भी नए नए लोगों से मिल रहा हूँ तो रोज़ नए लोग मुझे मिल रहे हैं, रोज़ नया सीखने को मिल रहा है। दीवान कनवाल जी से भी मैं हाल ही पर मिला था, प्रसिद्ध सिंगर हैं तो उनसे सीखने को मिला। त्रिभुवन गिरी महाराज मिले थे, उत्तराखंड के कवि हैं, उनसे सीखने को मिला। जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता है, बस जिंदगी चल रही है।
तो आपको अगर मौका मिले अपने रोल मॉडल या फिर देश के प्रधानमंत्री के साथ एक दिन बिताने का, हाँ। तो आप किसके साथ बिताना चाहेंगे?
मैं अपने रोल मॉडल के साथ बिताना चाहूँगा।
अच्छा, क्यों?
इसलिए क्योंकि उनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री अपने आप में हमारे बहुत अच्छे जो है देश के नेता हैं, देश के विकास में उनका एक अच्छा अहम योगदान है। हालांकि न्यूज़ में हम देखते हैं कि कई कबार हम तीखे बोल बोल देते हैं, क्योंकि वो हमारा काम है और जब जब कुछ ऐसा लगता है तो बोलना भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ, जैसे मैं भी जब हेमंत जी के साथ होता हूँ तो मुझे अपने को खूब सौभाग्यशाली समझता हूँ। उस वक्त सीखने को मिलता है एक एक बात, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे उनको अध्ययन है, किस लोगों से वो लोगों से मिल रहे हैं, तो यही सब डिसाइड करता है। सीखना चाहें तो आप एक रिक्शा जो चलाता है उससे भी सीख सकते हैं, एक टांगे चलाने वाले से भी सीख सकते हैं। बस
तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कहानियाँ कौन सबसे बढ़िया सुनाता है?
कहानियाँ एक रेडियो पे नीलेश मिश्रा हुए,
अच्छा
मुझे उनकी कहानियाँ बेहद पसंद आई, यादों का इडियट बॉक्स,
अच्छा
आपने अगर सुना होगा तो ये पहले से चलता था जब FM का समय था। तो नीलेश जो है वो नैनीताल में उनकी स्टडी हुई, उसके बाद वो भारत का एक बहुत बड़ा नाम हुए। अभी उनका एक स्लो करके चल रहा है गांव कनेक्शन उनका अखबार,
अच्छा
और टॉप 5 RJs में वो इंडिया के हैं और हमारे लोकल से वो उभरे हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। हेमंता की कहानियाँ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे वो कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं।
पर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि इन जनरल की सबसे बेहतर कहानी आपके हिसाब से कौन सुना जाता है, कि एक ऑटो वाला, एक लॉयर या फिर एक इंजीनियर?
मुझे तो कहानी का मतलब, मुझे लगता है मैं एक दिन भुजा घाट से ऊपर को निकल रहा था, शायद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब सही दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ। मैंने देखा कि एक भुट्टे वाला है, भुट्टे वाला एक काम कर रहा है,
हाँ
काम कर रहा है, तो मैंने उससे भुट्टा मैं जा रहा था तो उसको मैं उसकी क्रिएटिविटी देख रहा था, मैं छोटी छोटी चीज़ें देख रहा था, कैसे कोयले वो फूक रहा है, कैसे वो फट्टा लगा रहा है, कैसे धुआं उड़ रहा है, वो धुआं आंखों में लग रहा है, सर पे बैठ रहा है, फिर वो बड़े प्यार से उसको भून रहा है। तो उस तरह से देखा मैंने उसको, मैंने कहा क्या चीज़ है यार, मतलब कितना कितनी मोहब्बत से काम कर रहा है। तो कहानी तो वो हर व्यक्ति सुनाता है जो मेहनत करता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी लाइफ पे जो मांगते हैं।
अच्छा,
सब कुछ करो, ये मांगने वाला जो सिस्टम है ये अच्छा नहीं है। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा, लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप उन्हें मांगने भेज देते हैं, कोई रेस्टोरेंट पे अगर कॉफ़ी पीने जाए तो बाहर दो लड़के मिल जाते हैं जो कहते हैं भैया सुबह से खाना नहीं खाया, मैं वो नहीं किया। वो बच्चों की मजबूरी है, लेकिन उनके माँ बाप जो है उनको उस आदत पर डाल रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। जो काम करे वो कहानी है, मतलब कभी भी वही है, मैंने आपको पहले कहा जो दिखे वो लिख दे, वो कविता है। तो कहानी तो वही सुना रहा है जो काम कर रहा है,
अच्छा।
वो हर एक कहानी है, हम भी बैठे हैं तो ये भी एक कहानी है,
हाँ।
हो सकता है कि इसे कई लोग देख लें, कई लोग इस बात पे जो है समर्थन दें, कई कटाक्ष करें, तो जिंदगी वो है जो चल रही है सड़क पर, सड़क पर गड्ढों को देख कर लिख रही है कविता, कविताओं से जागरूक कर रही है नागरिकों को, तंज कस रही है सरकार को, मेरी नज़र पे वही है कविता और वही है कहानी।
बहुत खूब। आपको हमारे सवालों में से सबसे बेहतर सवाल कौन सा लगा?
वो 90 लाख वाला अच्छा था। सारे सवाल आपके बेहतरीन थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत प्यार है आपको, बहुत स्नेह है, इसी तरह से इतनी छोटी सी उम्र पे यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल से बाहर नहीं निकल पाते, टीचर से बाहर नहीं निकल पाते, वहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, इतना प्यारा सेटअप लेके आप आए, आपने चीज़ें की, आप लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को खुद भी, तो आप अच्छा करें, मुझे तो उम्मीद है आपसे बहुत ज़्यादा, और कोशिश करें इन फ्यूचर अगर अच्छा रहा तो आप भी बगडंडी के साथ जुड़िए, लहबर के साथ तो आप जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो देखते हैं जहाँ जाएगी रेल वहाँ हम भी चले जाएंगे।
आनी पानी, मैं हूँ बारसान।